कृषि विभाग सप्तम अध्याय। हमने पहले धन्यम धन्ययम अद्य धरणी तृण गुरु इसे श्लोक की व्याख्या की। त्रिलोकों में ये पृथ्वी धन्य है और ये पृथ्वी धन्य है वृंदावन की वजह से, मथुरा धन्य है और मथुरा भी धन्य है वृंदावन की वजह से, और वृंदावन धन्य है किसके लिए? गोप गोपियों के लिए, और गोप गोपियां किस लिए श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उसमें श्रीमती राधिका जी, इसलिए ये वृंदावन। अब स्पष्ट करके ये बतला रहे हैं, वृंदावनम सखी भुव बितने तिकीर्तिम जग देव की सुत पदम भुजल धल गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नित्यम प्रेक्षाद्विश्वान्न वर्तान्य समस्त सत्वम वृंदावनम सखी। कल मैंने इसकी साधारण रूप से इसकी व्याख्या की थी, वृंदावन इस पृथ्वी की, पृथ्वी में धन्य और ये वृंदावन के वजह से ये पृथ्वी स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक द्वारका आदि लोकों से ये वृंदावन धन्य हो रहा है। वृंदावन चारों तरफ में इसकी कृति को विस्तार कर रहा है। जब देवकी सु देवकी के पुत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों से की शोभा से, चरणों की शोभा से संपन्न है, जिसके छाप पृथ्वी पर पड़ते हैं जब चलते हैं। गोविंद वेणु अनुमत्त मयूर नित्य, और गोविंद के वेणु से जो मंत्र मंत्र आवाज आती है उसे सुन करके मेघों की आवाज की कल्पना करके मयूर नृत्य करने लगते हैं। मानो वो बिजली को कड़कते हुए उनके पीताम्बर के रूप में देखता है और मंद्र मंद्र गर्जन वो करता है, ऐसा देख करके वो नाचने लगता है। कृष्ण के शरीर को ही वो मेघ देखता है और बंसी की ध्वनि को वो आकाश का गर्जन सुनता है, समझता है। जिसे देख करके प्रेक्ष समस्त प्राणी, समस्त सत्सम, समस्त प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग सभी, यहां तक कि देवताओं की स्त्रियां इत्यादि सभी मुग्ध हो जाती, ऐसे अपने आंखों को बंद कर अपने समस्त सारे कार्यों को भी सार देते हैं। देवभूत की उनकी शुद्धि नहीं रहती जे मैं कहां हूं क्या कर रहा हूं, और एक चित्त से बिना पतल पलक गिराए देखते रहते। सनातन गोस्वामी इसकी टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार से गोपिकाओं के महात्म वर्णन करके अब विशेष रूप से ये वर्णन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं ये परीक्षित महाराज गोपियों के इन भावों को सुनकर गोपी भाव में अत्यंत निमिष्ट, गोपी भाव प्राप्त, गोपिका महात्मा विशेष वर्णने न गोपी भाव प्राप्तो असौ राज, असौ माने ये गोपी भाव का वर्णन करते करते गोपी भाव को प्राप्त, गोपी भाव का की प्राप्ति के लिए बिना गोपियों के भाव को प्राप्त हुए ब्रज जी की प्राप्ति नहीं हो सकती और कृष्ण की सेवा भी नहीं मिल सकती राधा कृष्ण की। गोपों के अनुगत्य में भी राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी, नंद यशोदा के अनुगत्य में भी नहीं मिलेगी, किसी के अनुगत्य से भक्ति नहीं मिलेगी। वो कैसे मिलेगा राधा कृष्ण? राधा कृष्ण की सेवा किसको प्राप्त होगी? जो उनकी दासी हो तब तो उनकी सेवा का सुयोग मिल सकता है। तो ये कैसे मिलेगी? चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि बिना गोपी भावे, बिना गोपियों के भाव से ये अनुगत में नहीं मिलता। वैसा ही भाव होना चाहिए। कैसे मिलेगा? गोपियों के भावों को श्रवण करते करते लोग उत्पन्न होने पर रागानुगा भक्ति का अनुशीलन से ये हो सकता है। अथवा यदि कोई वर्णन करे, सुने और वर्णन करे, ये तब तक हो सकता है उन गोपियों के भावों को कृष्ण से संबंधित तो हो सकता है। तो ये वर्णन कर रहे हैं, पहले तो सुना किससे? अनुश्रणियात वर्णयेत ज भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्ध कामम हृदरोग माशु अपिहनत अचिरेण धीर। यदि कोई उन्नत वैष्णव से पुनः पुनः श्रवण करने के पश्चात में इसका यदि वर्णन करता है तो पहले उसके अंदर में काम उपस्थित होता है। काम माने विशुद्ध गोपियों का प्रेम, और उसके द्वारा जागतिक काम रोग हृदय रोग ये सब दूर हो जाए। बिना भक्ति आए, पहले से भक्ति चित्त को निर्मल कर देंगे, इसके बाद में भक्ति आएगी, ये कष्ट कल्पना है। भक्ति नहीं आएगी, चित्त को हम संयत कर देंगे, चित्त को निर्मल बना लेंगे तो नहीं होगा। पहले चित्त को निर्मल तब फिर भक्ति, ऐसा नहीं। जितने जितने परिमाण में भक्ति आती जाएगी, जितने जितने परिमाण में हम श्रवण और कीर्तन करेंगे उतने परिमाण में भक्ति आएगी, उतना ही परिमाण में जगत के जितने अनर्थ हैं और काम रूप ये सब दूर। कहते हैं धीरह, धीरह माने क्या? धी युक्त, धी माने क्या? बुद्धि, बुद्धि माने क्या? जिनका चित्त स्थिर हो गया है। वो चित्त स्थिर कैसे हो गया है? जिनकी बुद्धि जो रसिक भावुक और तत्वज्ञ वैष्णव हैं, शास्त्र के वचन है, इनमें जिनकी श्रद्धा हो गई है, वो थी गुरु के वचन में जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको शास्त्र के वचनों में विश्वास नहीं है, उनको लाख कोटि जन्मों तक भक्ति होना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? पहले भक्ति होगी, इसके बाद में हृदय के रोग अनर्थ अपराध दूर होंगे, ऐसे नहीं। गुरु के इस वचन को, शास्त्र के इस वचन को जो मानते हैं वो भी। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा तु अन्योपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। श्रद्धा तु अन्य उपाय, दूसरे उपायों को छोड़कर, कर्म ज्ञान योग तपस्या सबको छोड़कर, भक्ति तो श्रद्धा तो अन्योपाय वर्जन भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति, भक्ति उन्मुखी कृष्ण की सेवा करेंगे ऐसी वृत्ति जिसके हृदय में हुई उसको श्रद्धा कहते हैं। किंतु श्रद्धा का दूसरा एक और लक्षण है, गुरु के वचनों में, शास्त्रों के वचन में सुदृढ़ विश्वास होगा। सुदृढ़ विश्वास किसमें? गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में, विशेषकर के भागवत के वचनों में। इसलिए शास्त्र ऐसा कहते हैं, बिना भक्ति के चित्त शुद्धि इत्यादि नहीं होगा। जिस किसी अवस्था में हमें, उसी अवस्था में रहते हुए भगवान की भक्ति को श्रवण करने का जीव मात्र को अधिकार है, और उसी स्थिति में भक्ति को ग्रहण करके जगत का सर्वोच्च, जगत की सर्वोच्च स्थिति परिमा भक्ति को वो पा सकते और जगत का वंदनीय हो जाएगा। माधुर्य कदम्बनी में ये सुना चाहती। इसलिए धी माने क्या? धी माने ऐसे विश्वास युक्त। तो जिसको ये विश्वास नहीं है तो वो अपराधी है, वैष्णव के चन्नामा अपराधी हैं, इनको भक्ति होना बड़ा भारी कठिन है और उनको ये चीज नहीं होगा। भक्ति का आधार क्या है? भक्ति का आधार क्या है? कैसे आरंभ, कैसे भक्ति होती है? पहले साधुता, उनके वचन में विश्वास नहीं होगा, उनका संग कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, आप वचनों में विश्वास नहीं तो क्या होगा, नहीं विश्वास। इसलिए अचिरेण धीर, बहुत जल्दी से जल्दी भी व्यक्ति ऐसा विश्वास व्यक्ति है तो पहले काम अपराकृत काम, गोपियों का जो रागात्मक भक्ति है उसके प्रति उसको लोभ होगा और धीरे धीरे वो आएगा और जितने परिमाण में आएगा वो उतना ही परिमाण में संसारी अनर्थ कुविचार इत्यादि दूर हो जाएंगे और अग्रसर हो जाएगा। परीक्षित महाराज जी इसका वर्णन पहले श्रवण किया, अनुश्रणियात अथ वर्ण श्रवण किया, अनुमाने क्या अनुश्रणियात निरंतर श्रवण, निरंतर श्रवण करो। परीक्षित महाराज ने और कोई भी साधन नहीं किया, अनुश्रणियात 7 दिन तक लगातार सुनते रहे, किंतु कैसे श्रद्धा के साथ श्रवण करते, दूसरा तो कोई साधन नहीं किया। और उसमें कहते हैं कि वो सिद्ध हो गए, गोपी भाव उनको प्राप्त हो गया, ये ठीक तरीका है। ऐसे परीक्षित महाराज तो साधारण थे नहीं, साधारण आदमी नहीं, मैं तो समझता हूं कि उनसे भी अधिक सौभाग्यवान है जो कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। इसलिए स्पष्ट रूप में अपने मैया को ये सब उपदेश दे रहे हैं, इसलिए वर्णन करने मात्र करते 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 परीक्षित महाराज जी गोपी भाव को प्राप्त होकर के परीक्षित अब अंत में सब लोगों का महात्मा, पृथ्वी का महात्मा, वृंदावन का महात्मा, मुरली ध्वनि का, वंशी ध्वनि का महात्मा, वहां के स्थावर जंगल और समस्त प्राणियों का महात्मा, सबका ये अलग अलग से वर्णन कर और उनको यथार्थ में देख रहे हैं ऐसे कृष्ण की लीला चरित्र को देख करके और अनलगर बिना किसी परिश्रम के अपने आप जल प्रपात की तरफ में स्फूर्त हो रही हरि कथा। वो क्या श्लोक, तस्मिन महन मुखरिता मधुबेश चरित्र पूर्ण सशीष, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो संसार के किसी काम में उसकी रुचि नहीं हो जाएगी और अधिकार नहीं, और इसमें हम यदि लग जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे महापुरुषों का संग और सेवन करने से ऐसा हो, हमको सुजोग नहीं दिया गया ऐसा करने के लिए, ये झूठ बात, अपना कुछ होना चाहिए ना, प्रयत्न ऐसा होना चाहिए, अपना ऐसा लोभ उत्पन्न होना चाहिए, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो तो जड़ को भी चेतन करने में समर्थ हैं भगवान और उनके परिकर, किंतु ऐसा वो करते नहीं, अपना प्रयास भी करना होगा तब तो भगवान की कृपा होगी। इसलिए अब सबका अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन में प्रविष्ट होकर के कृष्ण सर्वभूत मनोहर, समस्त प्राणियों के लिए परम मनोहर आकर्षक वैणी ध्वनि किया।
और इधर में महाप्रभु जी जैसे रूप शिक्षा में कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन रूपी तेज और पाइया उपशाखा बढ़ी है, तो उपशाखा कैसे दूर होगा,
श्रवण करने से श्रद्धा पूर्वक धीर व्यक्ति हो, धीर व्यक्ति हो करके गुरु वचनों में विश्वास रखे, फिर उसका कोई अपराध ही नहीं होगा, अनर्थ भी दूर हो जाएगा।
तो अनर्थ दूर होने की आवश्यकता क्या है,
हो सकता है इसी से ही विश्वास रखे, इसी से ही होगा, कुसंग न करे और ऐसा करता
है।
अनर्थ निवृत्ति के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण इसी की जरूरत है और कोई दूसरे उपाय की जरूरत नहीं है, और कोई दूसरे उपाय नहीं, अपराध न हो, किंतु वो चित्त ऐसे कैसे होगा जबकि वैष्णवों की साधुओं के संग में हरी कथा निरंतर यदि श्रवण करता है तो उसमें चित्त बल आएगा तो वैसा कर सकेगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको इतनी रुचि होगी उसको अपराध कहां, अनर्थ कहां, अपराध जैसा कुछ दिखने पर भी कृष्ण को गोपियां करें हमारे पैर दबाओ, ये अपराध नहीं है उस भगवान को, अपराध है, साधारण लोगों के लिए अपराध के अतिरिक्त क्या है? कहेंगे जैसे लो तुम्हारे हम सिर में पैरों की छाप लगा देते हैं, जो सोदा जी कान पकड़ के रुला दिया वेद दिखला रहे, अपराध नहीं है तो क्या है? अपराधी तो है किंतु अपराध नहीं है। किन के लिए? उनको कभी अपराध होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनका चित्त सब समय अनुकूलमय भाव से भरा पड़ा है। जहां प्रतिकूल भाव है, जहां सत्संग नहीं है, यहां पर ऐसा विश्वास नहीं है, वहां पर ये सीखे आते। हम लोग के सामने ऐसी कोई समस्या जीवन में आज तक नहीं आई, आई ही नहीं कभी, कभी हमने कल्पना नहीं की जैसे तैसे ये सब प्रश्न आते, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं, दिन रात इसी में डूबे हुए हैं।
जैसे कि भाव बताया अपराध से कथन की भाव अवश्य
हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे कि रूप गोस्वामी जी बैठे हैं और खंज वो आ गए और उन्होंने देखा नहीं, वो लीला में मत होकर के स्मरण कर रहे हैं, किंतु उन्होंने समझा जी हमारा उपहास कर रहे हैं, तो अभी उनका चित्त थोड़ा सा कुछ भक्त इससे विचलित हो गया, तब तो सनातन गोस्वामी से विचार करने लगे जी हमारा मन नहीं लग रहा है काली लीला इत्यादि के चिंतन में, क्यों क्या हो गया? उन्होंने किसी के यहाँ अपराध हो गया, तो जी मैंने तो कोई अपराध किया नहीं और सचमुच में किया नहीं, किंतु किसी ने मान लिया, और वो भी जो खंज कृष्णदास थे वो भी कम तो थे नहीं, किंतु अभी थोड़ी सी अभी उनमें कमी है, अनर्थ है, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा, तो उन्होंने कहा जी सबको निमंत्रण कराओ, सबको निमंत्रण किया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, रूप गोस्वामी के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा थी, अब उन श्रद्धा हमारी खत्म हो चुकी, हमको देखकर के हमारा वो उपहास करते हैं साधारण को जैसे, और ये यहीं पर है कांटा, बस उनको बुलवाया किसी तरह से, खुद रूप सनातन दोनों गए और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके चरणों में प्रणाम किया, अब तो वो करके खड़े होके हाय हाय कर लीजिए आप लोग हमको प्रणाम करते हैं, और ये हम लोगों का कोई दोष हो गया, हमारा दोष हो गया, कैसे दोष आ गया, आप हमारे निमंत्रण में आए नहीं, कोई बात जरूर है। तो उन्होंने कहा कल मैं इनसे मिलने गया तो ये हमको दे करके हंसने लगे, उन्होंने कहा जी सर मैं हंस नहीं रहा था, मैं तो कृष्ण की बंदरों के साथ में मित्रता दे करके और उनके हाथ से छीना झपटी दे करके मैं हंस रहा था, आपको तो आते ही मैंने देखा ही, तो आपकी तो आंख खुली हुई थी, मुझे तो आंख खुलने से ही आदमी वहां पर नहीं रहता, खुलने से भी चित्त वहां पर वो देखता नहीं, एक कोई अस्त्र शस्त्र बना रहा था, दत्तात्रेय ने उसको गुरु बनाया, वो इतने वो लोहार इतने अपने काम में व्यस्त और मत्त है, एक बारात चली गई बाजे कितने बजते हुए उसने देखा ही नहीं, लोगों ने पूछा बारात देखी, बारात कैसी, कहां बारात, देखा ही नहीं, ऐसे ही हो जाता है। जब उन्होंने अपनी गलती समझी तब क्षमा मांगा तो वो उनके चरण में गिर रहे, उनके चरण, ये रूप गोस्वामी की ये पीड़ा दपी सुनी जिता भाव है, उनका कोई अपराध नहीं, लोक शिक्षा के लिए ऐसा देख रहे हैं करा रहे हैं, जब इतना है तो बतलाओ कि हम लोग कहाँ पर किस में कितने पानी में डूबे हुए हैं, हम लोगों को तो इस सब का कोई चिंतन नहीं, भक्ति आए इसका चिंतन नहीं, हम तो अर्थ आगमन हो, खूब प्रतिष्ठा मिले और जगत को कंट्रोल कर सके, ऐसी भावना जहां है, अभी भक्ति की संभावना कहां, और ये विशेष करके सर्वोत्तम भक्ति, किंतु अनुरूप कृपा करके इस भक्ति को इसलिए कह रहे हैं कि निम्नाधिकारी भी श्रवण करके उसमें लोभ उत्पन्न होने के बाद में ऐसे ही भक्ति पाने के लिए लालायित होगा और उसके लिए कुछ प्रयत्न करेगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसके अधिकारी नहीं है, तभी पढ़ते सुनते इसलिए कि लोभ हो जाता है, यदि ये वर्णन करने मात्र से ही परीक्षित महाराज जी को ऐसा लोभ होकर के गोपी भाव की सिद्धि हो गई, यदि उसका छींटा भी हम लोगों के ऊपर में पड़ जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, इसलिए जरूर होगा, हमको पूर्ण विश्वास है जरूर होगा। और यह बात ठीक है, कोई कोई इसको उपन्यास समझ करके समझ रहे होंगे जैसे वो गोपी भाव परीक्षित महाराज जी को ये कैसे हो गया, ये तो द्वारकावासी कृष्ण के अनुग्रहित हैं ये, या मथुरावासी कृष्ण के अनुग्रहित, इनको गोपी भाव की कैसी प्राप्त हो सकती है? अरे जहां परम रसिक भाव तत्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी महामुक्त परम मुक्त उनका संग हुआ है और उनसे हरि कथा सब सुनते हैं, कृष्ण की गोदी में खेले हैं, उनको अनर्थ रह सकता है? ऐसे नृत्य की कोई भी संभव नहीं। ये दोनों मिल करके जगत को कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, इसलिए दोनों मिल करके अभिनय कर रहे हैं, दोनों ही अभिनय कर रहे हैं, कोई बद्ध जीव नहीं। इसलिए यह दिखला तरीका, यदि वो वर्णन करके गोपी भाव को प्राप्त कर सके और फिर अपनी मैया को वही काम देने के लिए, रागात्मक भक्ति में प्रवेश कराने के लिए वो शिक्षा दे रहे हैं। इसमें बड़ी शिक्षाएं की बातें, बहुत शिक्षा, बहुत शिक्षा की बात। साधारण से एक बात को समझो, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी और रावण उसको पार नहीं कर सका, उस रेखा में क्या चीज है कोई विचार करता है? रामायण तो सात कांड रामायण पढ़ लेते हैं, और सीता किसके बाप है? पिताजी किनके पिताजी का नाम सीता है? यह ऐसा प्रश्न क्या है वो उसने? वही है, राम नाम की शक्ति है, राम की भक्ति की शक्ति है ये। ऐसा ही करे तो हम भी खींच देंगे रेखा, कोई उसको पार नहीं कर सकता। तो कृष्णचंद्र जी वृंदावन में प्रविष्ट होकर के एक वन से दूसरे वन में लाखों गायों को लेकर और अपने लाखों सखाओं के साथ में एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हुए वेणुनाद कर रहे हैं। घर के अंदर में बैठी हुई ब्रजबालाएं हैं, गोपियां हैं, वो सुनते ही कहां कृष्ण है? मधुबन में, कृष्ण भांडीर वन में है, कृष्ण कहीं दूसरे वन में, कुमुद वन इत्यादि में है, गोवर्धन की तराई में है, गोवर्धन पर्वत के शीर्ष स्थान पर बैठे हुए बंसी बजा रहे हैं और गोपियां वृंदावन में घर में हैं। वहां से गोपियां सुन रही हैं और किसी को सुनाई नहीं पड़ा, ये कैसे हो? हम तो कहेंगे से तब उनको ये कल्पना की बात कृष्ण की अघटन पठन और अघटन घटन पटी ऐसी शक्ति है, जो नहीं होगा वो भी हो जाएगा, वही सुनेगा जिसके लिए कहा गया। आजकल कंप्यूटर सिस्टम में भी ऐसे ऐसे चीजें थोड़ी धीरे 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 कुछ निकल रही है। यदि विज्ञान उन्नत कर सका इतना तो नहीं कर सकेगा, किंतु विज्ञान उसी को कह रहे हैं। तो ये गोपियां घरों में बैठी हुई सुन करके प्रेम रस में मग्न हो गईं और अपने अपने सजातीय सखियों के साथ में कृष्ण की इस लीला का वर्णन कर रही हैं। मन वो देख रही है कृष्ण बंसी बजाते हुए चले जा रहे हैं, गले में वैजयंती माला है, होठों पर अधरों पर उनकी मधुर मुरली है और उसे स्वर निकल रहा है, श्री जगत को मोहित कर रहा है, पशु पक्षी प्राणियों को। उसमें एक सखी करें राधे, राधे देखो तो वृंदावन स्वर्ग से भी अपनी कृति को चारों तरफ में विस्तारित कर रहा है, घोषित कर रहा है, स्वर्ग से भी बहुत महान है ये। अथवा स्वर्ग लोक को, अर्थात स्वर्ग का प्रयोग कभी कभी वैकुंठ के लिए भी होता है, ये वैकुंठ लोक को भी मात कर रही है वृंदावन की शोभा। इस भोग लोकों में से भी यहां तक कि अयोध्या लोग, द्वारका लोग, गोलोक सबको पार करके ये वृंदावन की ख्याति कर रहा है। क्यों? जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज स्वरित इंदिरा स्वस्थ। अरे इंदिरा स्वयं यहां पर, इंदिरा माने महालक्ष्मी खुद बैठ करके जिस वृंदावन को सजा रही हूं, वो वृंदावन साधारण नहीं, यहां पर साफ झाड़ू देकर के साफ कर उनके कुंजों को सजा रही हैं, उनके मार्गों को, विधियों को सजा रही हैं। ये कौन कर रहा है? इंदिरा। तो वहां की शोभा का वर्णन करना चाहिए। इसे वैकुंठ से भी बढ़कर वृंदावन की शोभा है, वह वही वैकुंठ है जो हम जिसमें बैठे हुए हैं, किंतु माया ने जाल लगा दिया है, हम उसमें बैठ करके भी उसमें नहीं। वहां पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रेक्षा और चलाना, लोगों को ठगना, ये सब चीजें हैं वृंदावन में, किंतु हम तो इसी मथुरा में वृंदावन में वही देख रहे हैं। तो कहां है हम वृंदावन? ब्रजवासी कौन है जो कृष्ण को अपना बेटा, कृष्ण को अपना प्रियतम, कृष्ण को अपना सखा मान करके उस भाव में ऐसा निमग्न हो जाते हैं जिनको और किसी चीज की स्मृति नहीं। हमने नंदगांव में कुछ दिन पहले, आज से 30-25 वर्ष पहले देखा था, वहां का एक वृद्ध थे, वो उनका ऐसा भी मान था कि कृष्ण हमारा नाती है। उनकी उम्र कम से कम तो 75-80 से ऊपर की थी या 90 से, और कृष्ण को वैसे ही देखते हैं जैसे परजन्य जो नंद के पिताजी हैं कृष्ण को देख, उसी भाव में सब समय मग्न रहते हैं। वहां की कुछ बुढ़िया हैं जो अपने को यशोदा मैया का भाव देखती है, लाला लाला, और श्रीमती राधिका जी को लाली लाली कहते हैं, लाल लड़ाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हम जगत में कहां बैठे हैं। ये सब ब्रजवासी का भाव है। जिसमें ब्रजवासी का भाव है नहीं है और ब्रज में है, तो वो कंस में भी तो ब्रज में ही, मथुरा में ही तो जन्म लिया ना, कहीं बाहर से जन्म ले लिया? कंस के भाइयों ने भी तो मथुरा में ही जन्म लिया, तो फिर उनको ब्रजवासी नहीं कहे। अगासुर, बकासुर, पूतना, ये सब कहां के थे? ब्रज के ही थे, तो इनको ब्रजवासी कही है? ये ब्रजवासी नहीं। ब्रजवासी कौन है?
एक ने प्रश्न किया कि मथुरा में जितने दुष्ट होते हैं सारे सब में,
तो इसलिए कि कंस का अनुचर है, आयदा कृष्ण के भक्त हैं, तो ब्रजवासी वह जो कृष्ण के ब्रजवासियों के भाव में एकदम मग्न हो, जैसे ये गोपियां मग्न हो रही हैं, और जैसे मग्न हो गए हमारे परिचित महाराज गोपी भाव में एकदम प्रमत्त हो गए, और अपनी मैया को कह रहे हैं कृष्ण को अपना बेटा मत समझना मैया, और मैया संबोधन ही नहीं करते अपनी मैया को, कृष्ण को अपना प्राण प्रियतम समझना, गोपीजन बल्लभ समझना, अपना भी बल्लभ समझो, ये बेटा हो करके अपनी मैया को कृष्ण के लिए उपदेश कर, कोई भी ऐसा नहीं करता। जैसे कृष्ण को बेटा सखा और ऐसा ना मान करके तुम क्या मानो, जैसे गोपियां उनको प्राण प्रियतम मानती थी, गोपीजन बल्लभ करती थी, इसी प्रकार से तुम भी उनको मानो, यदि चाहती हूँ उस भाव को, गोपियों के भाव को प्राप्त करने के लिए, जैसे सूतियों ने किया, दंडकारण्य वासियों ने किया, ऐसे करो, जो ऐसा करेगा उसको कोई इधर उधर सोचने चिंता करने की बात है। जमुना पुलिन पर एक महिला लाखों कोटि वर्षों की वृद्ध श्वेत केशा बैठी हुई है, अर्जुन वहां पर पानी लाने गए पीने के लिए कृष्ण के लिए, उन्होंने देखा जो बैठी हुई है, थोड़ी देर तक उन्होंने प्रतीक्षा की और उसकी चारों तरफ परिक्रमा करके तो वहीं पर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे, जो उठी तब आंख खोल दिया, उन्होंने कहा जिस मैया तू कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है? तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो मेरा नाम अर्जुन है। कहाँ से आ रहे हो? अरे कृष्ण ये रथ पर आए हुए हैं। अच्छा कृष्ण आए हुए हैं, मैं लाखों कोटि वर्षों से यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, किसकी? गोपी भाव के लिए, गोपी भाव आश्रय करने के लिए, अभी तक सिद्धि नहीं हुई, अब ऐसे मालूम पड़ता है कि कृष्ण जब आए हैं तो जरूर हमारी मनु की सिद्धि हो। अर्जुन दौड़ करके कृष्ण को बुला लाए और कृष्ण आते ही कृष्ण के सामने वो खड़ी हो गई हाथियों, उन्होंने तुम्हारी भावना पूछी, सिद्धि हो गई। हम एक दिन में छटपटाते हैं और वो वहां पर हजारों लाखों वर्षों तक बैठ करके और आराधना कर रही है, लाख वर्ष के बाद में तब जाकर के उसकी सिद्धि होती है। दंडकारण्य वासी न जाने कितने जन्म तक आराधना, इसलिए आराधना चित्त को संयम करके ऐसी आराधना, ऐसी लीला कथाओं को श्रवण करें। तो लीला कथाएं व्यक्ति हैं, व्यक्ति माने क्या, जैसे कृष्ण व्यक्ति हैं ऐसे है। परम दयालु है ये भक्ति देवी, ये राधा जी का ही स्वरूप है भक्ति देवी, वो अनुग्रह करेंगे जब देखेंगे ये जो पात्र है। परिचित को देखा और उनको भाव में मग्न करा दिया, गोपी भाव लाए, और उनकी मैया का क्या हुआ होगा, उनको भी जरूर होगा। अंत में सनातन गोस्वामी ये ऐसा दिखलाएंगे। यहाँ पर वृंदावन की महिमा चारों तरफ में ये जो बतला रहे हैं, स्वर्ग से भी अधिक पढ़ करके वैकुंठ से भी। यहाँ वृंदावन माने क्या, कल हमने कुछ कुछ बतलाया था वहां पर वृंदावन में, अब आज फिर से सुनिए। वृंदावन, वृंदा का ही वृंदा माने तुलसी जो वृक्ष होते हैं, इसी की प्रधानता है। दूसरी बात, वृंदस्य समूहस्य अवनम तथा रक्षणम पालनम जस्मात्तम वृंदावनम। वृंदा, वृंद माने समूह, गो गोपी गोवत्स गोपीगण, इन सब का जो वृंद है, समूह है, उनका जो पालक है अवनम माने पालन करने वाले, रक्षा करने वाले, उनका पोषण करने वाले, जिससे होता है इनका पालन पोषण, वो वृंदावन। वृंदा अवन, वृंद अवन, वृंदावन। ये वृंदावन है कौन, जो सबकी रक्षा करते हैं, स्वयं बलदेव जी हैं। मूल संकर्षण भी नहीं, मूल संकर्षण है द्वारका में, ये बलदेव प्रभु जी हैं। बलदेव जी हैं कौन, कृष्ण ही हैं। केवल रंग का और अस्त्र धारण का केवल पार्थक्य है, दोनों एक ही शक्ति, वही संदिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु जी वृंदावन के गुल्म लता तरु कोयल और सब कुछ वही बने हुए हैं, इसलिए कृष्ण से अलग नहीं होंगे। और उसमें कुछ साधन सिद्ध जीव भी हैं, साधन सिद्ध जीव जो हैं उनके अनुगत्य में जिन्होंने भजन किया वो भी हैं। तो इनके समूह को गो गो गोपी गोवत्स, गो माने इंद्रिय, गो माने भक्ति, ये सब का जो पालन पोषण करने वाले हैं ये वृंदावन है। कैसे, वृंदावन में गोवर्धन, वहां पर मानस गंगा, कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड और नवल कुंड, अस्तरा कुंड, कितने कुंड हैं जिसमें गायों का पालन पोषण होता है। गोप लोग उसमें पानी पीते थे, पहले ये हैंड पंप और बोरिंग नहीं थी, कोई कुआं भी नहीं था। हमने अभी तक देखा है गोवर्धन में एक मीठा पानी का केवल कुआं था, बस एक ही, उसी से वहां का पानी। नंदगांव में, नंदगांव से करीब एक माइल दूर एक कुआं था, जिसे नंदगांव की सारी महिलाएं पानी भरने के लिए वहां से जाती थी। हम लोग परिक्रमा में 50 वर्ष गए हैं तो वहां देखा एक। तो ये सब कुंडों के पानी के द्वारा जो वृंदावन जल सबका पालन पोषण कर रहे हैं, हरी घासों के द्वारा पालन कर रहे हैं, कृष्ण के लिए अलंकार या वो धातु इत्यादि जो देते हैं। कृष्ण को दूध कौन देता है, गोवर्धन देते हैं। कैसे, अपने घासों से गायों को पुष्ट करके और वर्षा से उनको पानी दे करके, ये सब वृंदावन ही उनका पालन पोषण। यहां तक कि सभी गोविंद और ये सब नहीं, भगवान की भी, भगवान माने नंद नंदन की भी का भी पालन पोषण कौन कर रहा है, ये वृंदावन कर रहा है। कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, यदि वृंदावन में कुंज नहीं बनाते तो फिर क्या होता, कृष्ण का पालन पोषण होता नहीं। इसलिए कृष्ण का जो पालन पोषण इत्यादि भी हो रहा है, पालन पोषण माने उनके प्रेम की जो पुष्टि हो रही है, वो वृंदावन ही कर, वृंदावन छोड़ करके कृष्ण कभी भी रास नहीं कर सकते कि कर लेंगे, नहीं होगा। वृंदावन को छोड़ करके ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कि यशोदा मैया कृष्ण को लठिया से धमकाए, उनका कान ऐसे पकड़े, उनके हाथ को बांध दें, उनको खुद ओखल से बांध दें, कई कई संभव बन। वृंदावन के अतिरिक्त कभी वो बंसी नहीं बजा सकते, बजा सकते हैं, मोर मुकुट नहीं धारण कर सकते, ये सब वृंदावन में जो काम है। गैया नहीं चढ़ा सकते वृंदावन छोड़ करके, इसलिए वृंदावन में ही कृष्ण का पालन पोषण, उनके भावों की पुष्टि होती है और जगह नहीं होती। इसलिए वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणम पालनम पोषणम जस्मात् तत् वृंदावनम, ये ठीक है। सभी का पालन पोषण और रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि भगवान को भी सनातन गोस्वामी कहते हैं। यहाँ भगवान भगवान जो समस्त भगों के गुणों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, भगवान क्या ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान, उनको भी पालन पोषण करने वाले कौन है? ये वृंदावन। वृंदावन का अतिरिक्त ये सब चीजें नहीं, चार प्रकार की जो माधुरियां कृष्ण में भगवान में जो विशेष करके हैं, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये कहीं भी ब्रज के अतिरिक्त नहीं हो सकता। इन भावों को कौन देने वाला है? वृंदावन देने वाला है। अथवा यह वृंदावन देवकी सुत, जब देवकी सुत पदाप लब्ध लक्ष्मी, जब देवकी सुत, इसका कहने का भी एक तात्पर्य। एक तो जसोदा जी का ही नाम देवकी है इसलिए, किंतु उसके लिए नहीं कह रहे, कृष्ण का ऐश्वर्य दिखलाने के लिए कह रहे, क्योंकि देवकी सुत में ही मथुरेश द्वार ये जो कृष्ण है वासुदेव कृष्ण, उनमें ये छह ऐश्वर्य विशेष रूप से प्रकाशित, इसलिए वो दिखलाने के लिए। देवकी सुत कृष्ण के पदाम्बुज, पदाम्बुज माने पद, अम्बुज, अम्बुज माने कमल, चरण कमल, लब्ध लक्ष्मी, यहां चरण कमल माने ये मत समझ लो ये चरण कमल, कृष्ण के सर्वत्र चरण कमल नहीं है, चरण कमलों की छाप है, पादुका भी नहीं समझो, पादुका भी नहीं, कृष्ण के चरण कमलों की छाप ही चारों तरफ में शोभा लक्ष्मी शोभा जैसे दिखता है। किंतु ये छाप भी साधारण हमारे पैरों की छाप की तरफ नहीं, जिसको देख करके अक्रूर जैसे लोग, उद्धव जी जैसे लोग भुलक पड़े चरणों में, लक्ष्मी जी गिर पड़ती हैं जिनके लिए उसमें चरणों के छापों को देख करके, अक्रूर जी उसको साक्षात कृष्ण की तरह में वंदना कर रहे हैं, अपने हस्तक्षल से उन चरणों को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और उनको कृष्ण ही मान करके क्या कृष्ण हमारे ऊपर में कृपा करेंगे ऐसा कर रहे हैं। तो उन चरण कमलों की तो बात क्या है, बहुत दूर रहे, जब चरण कमलों की, चरण कमल नहीं पादुका नहीं बल्कि चरण कमल के छाप ही जितने ऐसे महिमा जुटते हैं, तो उन चरण कमलों की सामर्थ्य महिमा का क्या वर्णन किया जाएगा। अब हम लोग छाप तो नहीं देखते, कहीं कहीं देखते, चरण पहाड़ी में जाकर के देख सकते हैं, काम्य वन में उस छापे को देख सकते हैं, नंदगांव में उसके छाप को देख सकते, विशेष विशेष स्थलियों में, किंतु चरण की धूली यदि छाप मिट भी जाए तो धूली है कि नहीं जिसमें वो छाप अंकित हुए, वो तो है ही है ना, आखिर वो कली काल से वो भी बदल जाएंगे, नहीं बदले, किंतु हम उसका सामर्थ्य और महिमा नहीं समझ पाते क्योंकि अनर्थग्रस्त हैं। कंस साक्षात देख रहा है कृष्ण को, लड़ भी रहा है, कृष्ण उसको पकड़े होंगे कि नहीं, पकड़ करके तो गिराया, जब गिराया तो उनका स्पर्श हुआ, तो स्पर्श से तो माया हट जानी चाहिए, माया हटी न कि क्रोध में उसका मुंह ऐसे हो गया, और उसी स्थिति में गिराया तो उसका ऐसा ही क्रोध से होठों से दांतों से क्रोध को दबाया गया, मरा तो भी देखो ऐसा, इसलिए अनर्थग्रस्त जीव ये सब चीजें रहने पर भी नहीं समझते। वही जगन्नाथ देव जी उसको देख करके श्रीमन महाप्रभु भाव विगलित हो जाते, दौड़ते थे पकड़ने के लिए, और हम उसी जगन्नाथ को देखते कोई भाव ही नहीं आता। वही मदन मोहन जी अभी करौली में हैं, जो सनातन गोस्वामी को की बात को मान करके उनके पीछे पीछे गए वहां वृंदावन में, और बोले जैसे हमको नमक भी नहीं देता, नमक भी तो देना चाहिए, और हम लोग इतनी आराधना करते हैं, भोग राग देते हैं, सब कुछ बोलते ही नहीं। वही सनातन रूप गोस्वामी के गोविंद जी हैं, वही हम लोग चेष्टा करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं श्लोक स्तुति में, क्या है तिब्बत बिंदारण्य कल्प द्रुमाद स्मद रत्नागार सिंहासन सोची श्रीराधा श्रीघु बिंदु देव पृष्ठादि नहीं आता भाव, वो चिंता करते हैं तभी नहीं आंखों में से आंसू नहीं गिरते, ऐसा कठोर हृदय हो गया। वही तो है ना, गोपीनाथ जी वहीं पर हैं जो वहां पर गोपीनाथ का दर्शन करने कम लोग जाते हैं, गोविंद में जाते हैं। क्यों? वहां पर श्रृंगार अधिक होता है, सेवा अधिक होती है, परिपाटी, वो उपेक्षित जैसे पड़े हुए हैं, वहां पर कम लोग जाते हैं। आज यहाँ पर सेवा की उज्जवलता नहीं होती इतना, ये सब यहाँ पर कोई नहीं आता, द्वारकाधीश में जाते हैं किस लिए? श्रृंगार के लिए, श्रृंगार होता है इसलिए होता है। यदि वही रहे और श्रृंगार इत्यादि न हो और कितनी घटाएं नहीं हो तो कोई नहीं जाएगा। ये घटाओं के आकर्षण से लोग जाते हैं द्वारका के, द्वारकाधीश के दर्शन के लिए नहीं। बड़ी रेल पेल होती है, धक्का धुकी होती है, अरे भाई कैसा चीज है, जरा हम भी तो जरा देखा है, रेल पेल देखने के लिए जाते हैं। भक्ति तो वैसे तो होती है, इसलिए अभी अभी शुद्धा भक्ति, ये शुद्धा भक्ति की बात नहीं है ये सब चीजें। इसलिए कहते हैं ये स्वयं भगवान भी का भी ये वृंदावन पालन पोषण करता है इन भावों के द्वारा, इन कुंजों के द्वारा, इन तालाबों के द्वारा, राधा कुंड श्याम कुंड इत्यादि के द्वारा कृष्ण को भी वशीभूत करते रहते हैं। यह वृंदावन अथवा वृंदावन देवकी सूत्र कृष्ण के पद जुगलों से लक्ष्मी सर्वलोक शोभा संपत लाभ कर याचे। ये जो देवकी सूत्र हैं इनमें ऐश्वर्य है, इसलिए यहां पर देवकी सूत्र का शब्द का प्रयोग किया कि इनके चरणों की छाप से आज ये पृथ्वी और वृंदावन त्रिलोक का शोभा को यहां पर पा रहा है, सुशोभित हो रहा है। त्रिलोक से भी ये स्वर्ग और वैकुंठ से भी अधिक सुशोभित हो रहा है, अर्थात सर्व विलक्षण और सुलक्षण कृष्ण के चरण कमल है। कमल का प्रयोग किस लिए किया? चरण जो है ना कैसे हैं? कमल के, कमल में सुगंध और सुगंध, कोमलता, स्निग्धता, ये कमल में होती है और बड़ा सुंदर दिखता है। तो चरण कमल कैसे हैं? कमल के जैसे लाल लाल तो है ही हैं, उसमें सुगंध है, साथ साथ में बड़ा कोमल है, जैसे कि वो रहता है कमल का फूल रहता है, कोमल सुगंधी कृष्ण के चरण कमल ऐसे ही है। जहां पर वो पड़ जाते हैं वहां पर चतुर्वर्ग चिंतामणि स्वरूप दुर्लभतर भक्ति योग अर्थ धर्म काम मोक्ष इनको भी पराजित और हे समझाने वाला जी, ये भी बहुत गंदी चीज है। ऐसा भक्ति योग, ये सुगंध है भक्ति की, ये है भक्ति। उन चरणों की दर्शन से, उन चरणों के स्पर्श से क्या होगा? ऐसा भक्ति योग मिलेगा। कैसा भक्ति योग? ब्रज की भक्ति मिलेगी, जो समस्त पुरुषार्थों की चूड़ामणि है। यहां पर पदाम्बु जुगल कहने से पादुका मत समझो, खड़ाव मत समझो, कृष्ण की खड़ाव नहीं लगाते थे, पादुका मत समझो, कोई चमरुआ जूता नहीं पहनते थे, पहले चमरुआ खपरिया पहनती थी महिलाएं और पुरुष लोग भी, चमड़े जो मर जाते थे उनके ये सब बना करके साधारण रूप में बना लेते थे।